हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरमान मेहर को अस्पताल ले आया। अरमान को पता चला कि मेहर गर्भवती है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राजवीर था। ये सब जानकर अरमान का शरीर बेजान सा हो गया। तब उसने अपने खास बॉडीगार्ड तेजा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तेजा, एक घंटे के अंदर अंदर राजवीर को मेरे सामने पेश कर। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो आज अरमान ठाकुर तुझे गोली मार देगा। तेजा भी अरमान की बात सुनकर कांप गया और राजवीर को ढूंढने निकल गया। वहीं दूसरी ओर राजवीर को शायद पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि अरमान अब क्या करने वाला है। ये जानकर वो एक मुस्कुराहट के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गया। वहां अस्पताल में मेहर की हालत अब ठीक थी और वो खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने बाहर आकर अरमान से कहा, आप मेहर से मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादा बात ना करें। अरमान ने डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और वो अंदर मेहर के पास पहुँच गया। अरमान जैसे ही अंदर गया उसने देखा बेजान सी मेहर अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उसका बेहद कमज़ोर सा वजूद दिखाई दे रहा था। उसे देखकर अरमान की आंखें भर आईं, लेकिन वो अपने आंसू अपनी बहन को नहीं दिखा सकता था, इसलिए अपने आंसू साफ करते हुए वो उसके पास पहुंचा। उसने देखा मेहर ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। अरमान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना। ये बात सुनकर मेहर ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने अरमान को देखकर और उसकी बातें सुनकर वो चौंक गई। फिर उसकी आंखों से भी आंसुओं का सैलाब शुरू हो गया और वो बेतहाशा रोने लगी। अभी वे दोनों बहन भाई एक दूसरे के शिकवे गिले दूर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर के साथ पुलिस उस कमरे में आ गई। पुलिस को देखकर मेहर चौंक गई। तब उस डॉक्टर ने कहा, मैडम, ये आपके बयान के लिए यहाँ आई हैं। आपके साथ ये घिनौना व्यवहार किसने किया है, आप उसके बारे में पुलिस को बताइए। इंस्पेक्टर साहब जरूर इसकी कार्रवाई करेंगे और आपके मुजरिम को सलाखों के पीछे डालेंगे। उनकी बात सुनकर मेहर कांपने लगी, लेकिन अरमान अभी शायद राजवीर को अरेस्ट नहीं कराना चाहता था क्योंकि वो अरमान ठाकुर था। वो अपने दुश्मन को अपने हाथों से सजा देने में यकीन रखता था। तब अरमान ने कहा, मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अरमान की बात सुनकर वो डॉक्टर चौंक गई जो पुलिस को लेकर आई थी। उसने अरमान से कहा, मिस्टर ठाकुर, ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी बहन को टॉर्चर किया गया है, ये सरासर जुर्म है। घरेलू हिंसा करने के जुर्म में उसके पति को सख्त से सख्त सजा हो सकती है। तब अरमान ने अपना हाथ उठाया और बोला, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया है, मैंने कहा ना मुझे कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है, जाओ यहाँ से तुम लोग। तुम लोग जाते हो या मैं तुम्हारे कमिश्नर को बुलाऊं। अरमान की धमकी सुनकर वे पुलिस वाले डर गए और डॉक्टर को कहते हुए, मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से निकल गए। और वो डॉक्टर एक नज़र अरमान पर तो एक नज़र मेहर पर डालती हुई अपने पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। तब अरमान मेहर के पास बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें उस राजवीर के हवाले कर दिया और तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया और शायद इसी बात का उसने फ़ायदा उठा लिया था। पर वो शायद ये भूल गया, उसने किसी आम लड़की पर हाथ नहीं डाला है, उसने अरमान ठाकुर की बहन पर हाथ डाला है। एक बार जोया के परिवार ने मेरी बहन पर हाथ डाला था, मैंने उस परिवार के एक एक मर्द की गर्दन अपने इन हाथों से काटी थी और जब इतने पर भी मेरा मन नहीं माना था तो मैंने उन लोगों की इज्जत यानी जोया की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। और इस राजवीर की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में रहकर ही मेरी बहन के साथ इतनी ज्यादा दरिंदगी कर बैठा। बस राजवीर सिंघानिया, बस अब तू देख ये अरमान ठाकुर क्या करता है, अब तू अरमान ठाकुर का असली रूप देखेगा। अरमान मेहर का हाथ पकड़े हुए गुस्से से सब सोच रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे अरमान साहब, आपने याद किया मुझे। ये सुनते ही अरमान पीछे की ओर पलटा और अपने पीछे राजवीर को देखकर उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अरमान मेहर का हाथ छोड़कर गुस्से से राजवीर की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि अरमान के हाथ राजवीर के गिरेबान तक पहुंच पाते, राजवीर ने एक गन निकालकर उसके माथे से लगा दी। ये देखकर मेहर की एक चीख निकल गई। वहीं दूसरी ओर अबीर राठौड़ सीना तान कर जोया के आगे खड़ा हो गया था और बोला, मैं नहीं जानता तुम मुझे किस गुनाह की सजा देना चाहती हो, लेकिन अगर मेरी जान लेकर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर अबीर राठौर ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एक वक्त था कि अबीर राठौर के इशारे पर किसी की भी जान चली जाती थी और केवल अबीर राठौर को आंख उठाकर देखने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान किसी के आगे मजबूर नहीं होता, लेकिन मोहब्बत के आगे बेहद मजबूर हो जाता है। आज अपनी मोहब्बत के लिए इतना पावरफुल इंसान मरने के लिए खड़ा हुआ था, वो बिना ये जाने कि उसका कसूर क्या था। जोया को लग रहा था अबीर अनजान बन रहा है, इसलिए कुछ न पता होने का नाटक कर रहा है। जोया ने ट्रिगर पर अपनी उंगली मजबूती से जमा ली थी और वो फायर करने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ आकर ऊपर की ओर कर दिया। जोया चूंकि उस वक्त ट्रिगर पर पकड़ मजबूत थी, उसी पल उसकी गन से एक जोरदार फायर हो गई, जिसकी आवाज से उसने खुद अपने कान बंद कर लिए थे। अबीर ने अपनी आंखें खोली तो जोया को आंखें बंद किए हुए अपने दोनों हाथ कानों पर रखे हुए पाया। जोया के बराबर में खड़ा हुआ अकरम उन दोनों को बारी बारी से देखने लगा था। जोया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके ठीक सामने अबीर राठौर खड़ा हुआ था। जोया ने अपनी बराबर में देखा और अकरम को खड़ा हुआ पाया। जोया ने एक बार फिर गन उठाई और अबीर राठौर की ओर निशाना लगाने लगी। तभी अकरम एक बार फिर से अबीर और जोया के बीच में खड़ा हो गया। जोया, हट जाओ भाई, मैं आज इस अबीर राठौर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आप हट जाइए, बहुत खिलवाड़ कर लिया इन लोगों ने मेरे साथ, अब मैं एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मार डालूंगी। तब अकरम बोला, जोया शांत हो जाओ, मिस्टर राठौर बेगुनाह हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो मासूम हैं। तब जोया बोली, नहीं भाई नहीं, ये बेगुनाह नहीं है, इसका मेरा पीछा करना, हमें अपने घर ले जाना, ये सब प्लान था मुझे एक बार फिर फंसाने के लिए, मैंने खुद सुना है उसे कहते हुए, वे भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, ये भी गुनाहगार है। जोया चीखे मार रही थी और अबीर जोया को बदहवास सी हालत में देख रहा था। तब जोया बोली, आप हट जाइए मेरे रास्ते से, मैं इन्हें भी आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर जोया अकरम को हटाने लगी और अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से अबीर राठौर की ओर निशाना लगाने लगी थी। अब अकरम को जोया पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और जब जोया ने एक बार और अकरम को सामने से हटने को कहकर धक्का दिया, तभी अकरम ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। और अबीर को अकरम का यूं जोया पर हाथ उठाना पसंद नहीं आया और अबीर ने अकरम का वो हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बोला, अगर आप जोया के भाई ना होते और कोई और होते तो उस पर हाथ उठाने वाले को मैं जिंदा गाड़ देता। अबीर की ये बात सुनकर जहां अकरम मुस्कुरा उठा, वहीं जोया हैरानी से उसे देखने लगी थी। तब अकरम बोला, तुमने जिस इंसान की तुम जान लेना चाहती थी, वही इंसान तुम्हारे ऊपर जरा सा हाथ उठाने पर किसी की भी जान ले सकता है, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मिस्टर अबीर राठौड़ उन लोगों से मिले हुए हैं? तुम जानती हो, जब तुम अकेले घर से जाने की जिद की, मैं तभी समझ गया था कि तुम जरूर कुछ न कुछ छुपा रही हो।
और तुम जब अबीर जी के गार्ड को चकमा देकर वहां से निकली, उसी वक्त मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे हो लिया था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम किसी खतरे में ना पड़ जाओ। और जब तुम उस घर में उससे मिली और उस वक्त तुम दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई, उसका मैंने एक एक लफ्ज सुना था। लेकिन जोया जी, चाहता हूँ कि आज जो तुमने हिम्मत का काम किया है, उसको सबक सिखाकर मन करता है तुम्हें झुककर सलाम करूँ। वाकई तुम अब काफी बहादुर हो, जो कभी भी किसी का भी सामना कर सकती हो। लेकिन बेटा, गुस्सा इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, यही तुम्हारे साथ हुआ। अरहम को सजा देने के बाद तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि अबीर राठौर भी उससे मिले हुए हैं, बस यही सच मानकर तुम उनकी जान लेने के लिए उतरो हो गई। तब अरहम का नाम सुनकर अबीर चौंक गया, क्योंकि अरहम नाम के बंदे से तो उसकी आज ही मुलाकात हुई थी और उसी का सच जानकर तो वो परेशान था और अपनी परेशानी दूर करने इस बीच पर चला आया था जहां जोया उससे टकरा गई थी। तब अबीर अकरम की ओर देखते हुए बोला, क्या नाम लिया आपने, अरहम, राइट? तब अकरम बोला, जी हाँ मिस्टर अबीर, मैंने अरहम का ही नाम लिया है, अरहम ठाकुर, जिससे आपकी आज सुबह ही आपकी सौतेली माँ के घर पर मुलाकात हुई थी। अकरम के मुंह से ये सुनकर अबीर चौंक गया और बोला, आपको ये सब कैसे पता? तब अकरम बोला, अबीर साहब, मैं इस देश में एक बिजनेसमैन की हैसियत से आया हूँ, लेकिन असल में एक इंडियन पुलिस ऑफिसर हूँ। वहाँ कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे जोया और रिया की जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा और इस देश में आ गया। मुझे लगा था हमारे दुश्मन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मैं गलत था, वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे थे। तभी अबीर ने अकरम से कहा, तो फिर आप अरहम को कैसे जानते हैं और उसकी आप लोगों से क्या दुश्मनी है? तब कितनी देर से चुप खड़ी रिया, जो कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी, जिस पर उन तीनों का ध्यान ही नहीं गया था, वो एकदम से अबीर के सामने खड़ी होकर बोल पड़ी, बलात्कारी है वो।